प्रातः क्लास है 27/4/1966 बुधवार को रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। बच्चों ने सुना जो जन्म जन्मांतर गाते आते हैं, महिमा करते आते हैं, अभी सिर्फ बच्चों ने जाना है कि ज्ञान सागर है, वर्षा दे रहे हैं और उनकी मत पर चलना है। उनकी श्रीमत तो बहुत नामी ग्रामी है, काहे में नामी ग्रामी है, श्रीमद् भगवत गीता श्री श्री से श्रेष्ठ बनाते हैं। बनाते कौन है? शिव बाबा। किससे श्रेष्ठ बनाते हैं? श्री श्री से श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बनाने वाला शिव बाबा है, बनते हैं लक्ष्मी नारायण, यानी श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा कहें व श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहें, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ से तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, जबकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप खड़ा है तो फिर बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो देखो श्रेष्ठ कितने बनते हो, बाप के वर्षे के लायक तो श्रेष्ठ हुए ना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर्षा देते हैं। जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं क्या है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर्षा, है सी सी 108 वो तो टाइटल धराते हैं और यहाँ तो बनाने वाला आया हुआ है। 108 को श्रेष्ठ बनाता है क्योंकि हर एक श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सो भी बच्चों के ऑब्जेक्ट प्राप्ति का पता है कि हम अभी बाबा से शिष्य बनते हैं, कि जो पुरानी देह और दुनिया का संबंध छोड़ते छोड़ते हम ऐसे बन जाते हैं। ये ज्ञान का काम है, बुद्धि का काम है, क्योंकि धंधा भी करते हैं, कोई मना नहीं करते हैं, परंतु साथ साथ में ये ज्ञान भी मिलता रहता है कि हमको ये जो कुछ भी देखने में आता है ये गोया थोड़े समय में होगा ही नहीं। ये जो दुनिया देखने में आती है नहीं होगी और फिर नई दुनिया होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा समझाते रहते हैं ना, नया मकान बनता है, पुराने के लिए समझ में आता है कि अभी है ये, पीछे नहीं होगा, ये भी तो ज्ञान है ना। बच्चे बैठे हैं पुराने मकान में, नया बन रहा है और हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हम नए में जाएंगे, पुराना विनाश हो जाएगा। बरोबर बच्चे जानते हैं कि ये बाबा नई दुनिया रच रहे हैं, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, कि तैयार ही करके हम बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगे। बाबा कोई मेहनत देते नहीं है, वो तो टीचर है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो ये तीनों ही है। कौन? कौन है तीनों? शिव बाबा है अभी, बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी, क्योंकि बाप का काम है पहले बीज आरोपण करना, अंत में बच्चों को वर्षा देना। वर्षा है नई दुनिया का, ये काम ब्रह्मा के द्वारा तो नहीं होता है, ब्रह्मा के रूप में नहीं होता है, तो फिर वो कौन है जिसके द्वारा बाप का काम होता है, टीचर का भी काम होता है? टीचर है पाठ का व्याख्या देने वाला, मुरली तो आई, मुरली है कविता, ब्रह्मा के द्वारा, परंतु मुरली के एक एक वाक्य की व्याख्या तो नहीं आई। तो व्याख्या देने वाला वो टीचर भी है और फिर सदगति करने वाला सदगुरु भी है। पहले काहे की सदगति करता है, है शरीर की सदगति करता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता है। मन बुद्धि की आत्मा, मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो सदगति में जाती है तो दुर्गति से बच जाती है। दुर्गति है नीचे जाने की, सदगति है ऊपर जाने के लिए। बुद्धि का योग ऊपर जाता है, मन सदगति है। मनन चिंतन में नई नई बातें निकालने में, अपने 84 जन्म की हिस्ट्री जानने में बुद्धि जाती है तो सदगति है। फिर कहते हैं तुम्हारी शरीर रूपी नैया और तुम्हारी आत्मा का खेवैया एक ही है। शरीर की भी सदगति करते हैं, माना 5 तत्वों की भी सदगति करते हैं। जब तक ये 5 तत्व अर्थात प्रकृति सतो प्रधान नहीं बनी है तब तक नई दुनिया नहीं हो सकती, नहीं कही जा सकती। तो सदगुरु द्वारा सदगति ये तीनों ही है शिवा के नाम। बाप अभी संगम में बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट होता है, टीचर भी तो, सदगुरु भी तो सर्वेंट, क्योंकि वो भी बच्चों को सुधारते हैं। तो ये बाबा ही है ना, और तो सदगुरु कोई है नहीं। ये बाबा है क्योंकि इनको ही फुरना रहता है बच्चों का। जो बाप होगा उनको ही बच्चों का फुरना होगा ना। तो ये एक ही बाप है, इनको दोनों फुरने हैं। एक बाप को कभी दो फुरने नहीं होते हैं कि मैं इनको पढ़ाऊंगा भी और फिर सदगति भी दूंगा। दुनिया में ये कभी किसी के पास होता नहीं है, ये एक ही बाप है जिसके पास ये फुरना है कि मैं जाऊंगा मीठे मीठे सीखे लिए बच्चों को, फिर कल पहले माफिक जा करके अपना बनाऊंगा और फिर लायक बनाऊंगा। अभी रावण के बने हैं, फिर इन्हें अपना बनाऊंगा और ले जाऊंगा। अपना बनाऊंगा माने अभी बच्चे देवान में, फिर देवान से छुड़ा करके आत्म की स्थिति में ले जाऊंगा। वो गुरु लोग कोई लायक नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद ही देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो आत्मा है, सदैव आत्मा है, मुकर्रर रथ में मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं तो भी आत्म की स्थिति में रहते हैं। तो बाप ही बच्चों को आत्मा बनाकर साथ ले जाते हैं, देवान से छुड़ाते हैं। और गुरु तो कोई साथ में ले नहीं जाते, वो न खुद जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु लोग तो जा ही नहीं सकते हैं, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो तो नहीं ले जाएंगे वैकुंठ में या स्वर्ग में या नई दुनिया में, कोई भी गुरु नहीं ले जाएगा। किसकी भी ताकत नहीं है सिवाय बाप के। तो देखो उनके तुम डायरेक्ट बच्चे बैठे हुए हो। किनके है? शिव बाबा जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, डायरेक्ट आया हुआ है, और उनके तुम डायरेक्ट बच्चे बैठे हो। सुनते हो कि बरोबर हमको वही सच्चा ज्ञान का सागर, जिसको कहा जाता है प्रेम का सागर, सुख का सागर। देखो बाबा ने कल सुबह कहा ना कि अपने बाप की महिमा लिखो, ये महिमा तो कोई और की हो ही नहीं सकती है। तो महिमा दिल में धारण करके नशा तो भले चढ़े ना, कि ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा, श्री श्री श्रीमाना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा हमको इतना ऊंचा पढ़ाई पढ़ा रहे, और ये भी कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि नहीं, ऐसे बच्चे नहीं समझते हैं कि हम अभी इस जन्म में बैरिस्टर बनते हैं, दूसरे जन्म में भी बैरिस्टर बनेंगे। नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो। इस समय में हम कंगाल हैं और दूसरे जन्म में बाबा आया है हमको ऊंचे से ऊंचा पद दिलाने के लिए, और फिर कहने के लिए बच्चे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बातें सारी ही न्यारी है, बिल्कुल न्यारी बात है। 27:4-6 की वाणी का दूसरा पेज, न शास्त्रों में ये बातें हैं, न कभी सुनने में आई हैं, कुछ है ही नहीं शास्त्रों में, तो सुनेंगे कहाँ से? बाप ने आकर के बच्चों को अपना बनाया है, तो देखो बच्चे कितने निश्चय बुद्धि वाले होते जाते हैं कि बरोबर ये नॉलेज हमको बाप ही दे रहे, और वो कहते भी हैं कि कल्प कल्प में तुमको नॉलेज देने आया हुआ। देखो ये नॉलेज देने वाला कौन है, बाप भी कौन है, बंदर है। बच्चों को कितनी खुशी, कितना नशा चढ़ना चाहिए, परंतु स्थाई नशा, स्थाई खुशी चढ़ती ही नहीं है। स्थाई खुशी चढ़ जावे तो गोया जैसे कि इम्तहान पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत ही वृद्धि को पाना है ना, तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाई, जैसे कोई अलग बे से लेकर के आईसीएस तक पढ़ता है, बड़े से बड़ा इम्तहान का टाइम तो लगता है ना, एकदम तो नहीं हो जाता है। तो इसमें इम्तहान एक ही है, परंतु बाबा कहते हैं ना, ये खाद निकालने के लिए कि जो तमो प्रधान, इसको तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लग गया, बल्कि और ही जागती लग गया। देखो तो गोल्डन एज से फिर सिल्वर एज आती है, तो हम ऐसे समय कहेंगे कि सतयुग में तो थे गोल्डन एज, पीछे त्रेता में जब राम राज्य है तब चांदी की खाद पड़ जाती है। हमको इतना योग में रहना है। देखो विचार करो अपनी बुद्धि से, अच्छी तरह से विचार करो, जो वो जरा हम भी होते हैं, नीचे होते हैं थोड़ा, दो कला कम हो जाती है तो चांदी आकर के पड़ती है, तो जरूर कलाएं कम होती जाती है ना। तो वो कलाएं भी कम क्यों हुई? संगम में हम एकदम सतो प्रधान बने, और फिर नीचे गिरते गए, तो है भी ये युक्ति सतो प्रधान बनने की कि बच्चों को एक बाप को याद करते रहना है, जितना जितना एक बाप को याद करेंगे उतना उतना ऊंच चढ़ते जाएंगे। समझा कि नीचे क्यों गिरे और ऊपर कैसे चढ़ते हैं? क्यों गिरे नीचे? त्रेता में दो कलाएं कम हुई, द्वापर में आठ कलाएं कम हो गई, कलयुग में कलाहीनता आ गई, और यहां संगम में एक सेकंड में ऊपर। तो कारण क्या है? एक बाप की याद। जैसे स्कूल में बच्चों को दौड़ाते हैं, जाओ, उनको हाथ लगा करके लौटाओ। अभी हम जा करके ये बुद्ध रूपी हाथ लगा करके लौट करके कोई इस दुनिया में नहीं आएंगे, हम पुरानी दुनिया में आएंगे ही नहीं। और वो दौड़ी तो स्कूल की बात है थोड़ी सी, वो तो बहुत होता रहता है, तो बहुत करके रेसिस होती है ना, चक्कर लगा करके जा करके पहुंचने का है। यहाँ तो ये तुम जानते हो कि हमको भी बाबा को याद करते करते पहुंचना है, तुम जानते हो कि हम फिर वहाँ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बाप की याद तो होती ही नहीं है, ज्ञान तो होता ही नहीं है। तो देखो ये भी रेस होती है, तो घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा की रेस होगी, भले कितनी भी बाइसिकल जा करके दो चार दस बारी चक्कर लगा करके आवे, पर ये तो देखो यहाँ तुमको कितनी रेस करनी पड़ती है, पहुंचने में कितनी रेस, रेस पहुंचने में कितनी लगती है और लौट कराने में कितनी देर लगती है। रेस करने में हमको यहाँ संगम में एक जन्म लगता है, इस जन्म का जो भी बाकी समय है फिर वहां से लौट कर आने में इसी जगह पर देखो कितना 5000 वर्ष लग जाता है, क्योंकि फिर तो नीचे ही उतरते रहते हैं। क्या कारण हुआ चढ़ने का और उतरने का है? यहाँ 5000 साल क्यों उतरते रहते हैं और संगम में हम क्यों चढ़ जाते हैं एक ही जन्म में है? लौकिक दुनिया में अनेकों का संग का रंग लगता है और बाबा का ज्ञान तो होता ही नहीं, बाबा की पहचान तो होती ही नहीं है, तो याद आने का सवाल ही नहीं। तो चांदी की कॉपर की लोहे की खाद पड़ती रहती है, संग का रंग लगता रहता है, बाबा ने कहा ना चांदी थोड़ी थोड़ी पड़ती जाती है, यहाँ तक के आकर के चांदी की खाद पड़ जाती है और नाम बदल जाता है सिल्वरी, गोल्डन एज खत्म। अभी हमको गोल्डन एज में पहुंचना है तो फिर हमको एकदम प्योर होना है, तो कैसे प्योर बनेंगे? और कोई की याद ना आवे, एक बाप दूसरा न कोई, तो बच्चों को मेहनत करनी पड़े। बाबा बार बार इस योग की अवस्था को बहुत सावधानी देते हैं, किस योग की अवस्था को, कि हमारा बुद्धि का योग कोई औरों के साथ न लगने पाए, एक बाप ही याद रहे। अब भी विचारी याद, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए बोलते हैं। क्या करने के लिए? पुरुषार्थ या देहार्थ? पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुष माने आत्मा, आत्मा की सदगति के लिए बोलते हैं। आत्मा की सदगति होगी तो शरीर की भी सदगति हो जाएगी। बाबा तो कह दिया ना, देखो ये ज्ञान कितने लाखों सुन करके आए। बॉम्बे में प्रदर्शनी में गए, वहां कितने गए होंगे? अगर अभी भी प्रदर्शनी रखें तो बहुत आवे। और फिर भी बॉम्बे तो बहुत दूर है, बहुत 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 दूर, बहुत फैली हुई है। देखो बॉम्बे में 40 लाख आदमी, अच्छा वो बात तो छोड़ दो, जो हल्के हल्के होते हैं, मेहतर भंगी गरीब बिल्कुल आधा तो होगा। उन गरीबों को आधे से भी जास्ती समझो, जो गरीब आ भी नहीं सकते होंगे इतना दूर से, और वो गरीब आएंगे भी नहीं, यहाँ अंदर भी नहीं आवेंगे। बाकी में से देखो फिर कितने आते हैं, थोड़े। उसमें से भी देखो क्या कोई भी निकले आकर के कोर्स लेवे 7 रोज का, या कुछ समय तक रेगुलर आते रहे तो वो देखो निकले। तो हुआ ना कोटन में को जो शास्त्र में लिख दिया है, नर शास्त्र कोटन में को, और कोई में भी को आकर के कोर्स उठाएंगे। तो कितनी मेहनत लगती है, सत्ताईस 466 की वाणी का तीसरा पेज। इस ज्ञान मार्ग में बच्चे समझते बरोबर हैं, अभी ऐसा तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है, कभी किसी को आता भी नहीं है। बाकी मनुष्य बल कितने भी बहुत होंगे, कोई में रिद्धि सिद्धि हो भी होगी, कोई बहुत अच्छी तरह से गीता बहुत प्यार से पढ़ते होंगे, जैसे आजकल की बच्चियां और बच्चे निकले हुए हैं, माइयां भी निकली हैं, गीता कंठ कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे बहुत होते हैं जो वेद उपनिषद ये कुछ थोड़ा कंठ कर लेते हैं बस, फिर जब कथा सुनाते हैं वेद और उन शास्त्रों से श्लोक उच्चारण करते रहते हैं और उनको ये समझाते रहते हैं, वो समझते हैं ये बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़ा विद्वान है। जितना जितना जो अच्छी तरह से बिगर कोई पुस्तक निकल करके धुन लगाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, तो बहुत बड़ा समझते हैं। बोलते हैं ये देखो सभी शास्त्रों का विद्वान पंडित आचार्य है। तो पढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, और मेहनत करते करते कंठ भी कर लेते हैं कि साधु महात्मा लोग कोई शास्त्र लेकर नहीं बैठते हैं, अरे वो तो कथा वाले जाकर के अंदर बैठते हैं, रामायण फलाना करते हैं, वो याद कर देते हैं उसमें सब। तो इतनी याद जब बहुत करते हैं तो कहते हैं कि ये तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। देखो सभी शास्त्र बताते जाएंगे, फलाने शास्त्र में ये लिखा है, फलाने में वो लिखा है, तो शास्त्र पढ़ते हैं ना। ये बाबा तो ऐसे नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा तो सिर्फ थोड़ी ही बात समझाते हैं, बच्चे अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, पतित बन गए हो, वो ऐसे नहीं आकर कहते हैं कि बाबा समझाते हैं कि तुम पतित बन गए हो, अभी तुम इस रीति से पावन बनेंगे, वो बातें वहां नहीं है। क्योंकि वो पतित पावन है, वो बातें कैसे करते हैं? तुम तो पतित पावन को बुलाते हो ना कि बाबा हम पतित बन गए हैं, आओ आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। अभी सो पावन ये जानते हैं कि बरोबर सो पावन माना, फिर हमको जीवन मुक्ति दो। अभी हम पूरा जीवन बंध में आ गए, बाबा ने समझाया ना, सभी मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आना है जरूर, इसलिए है जीवन मुक्ति। परंतु जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने समझाया है कि सब ऐसे थोड़े ही सतयुग में आवेंगे, सब थोड़े ही एक जैसा पुरुषार्थ करेंगे, सभी तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, नहीं, बहुत हैं भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं, बहुत हैं जो पीछे आने वाले हैं, धर्म भी नंबर बार आते हैं ना। तो देखो कितनी बड़ी बातें समझाते हैं, ये तो समझने की बात है, ये शास्त्र पढ़ करके औरों को सुनाने की नहीं है, ये तो सारी ज्ञान की बातें बुद्धि में रखना है बच्चों को अच्छी तरह से। देखो बाबा ये जो षष्ठी चक्कर समझाते रहते हैं, षष्ठी के चक्कर को समझाना कोई मासी का घर है क्या? हैं? ऐसे क्यों कहा? क्योंकि सारा षष्ठी का चक्कर समझाना उसी का काम है जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हो, उसी को याद रहेगा। और सब आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं तो भूल जाती हैं। जब बाबा आते हैं तो ये षष्ठी चक्र समझना भी सहज हो जाता है कि बरोबर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हम समझे कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी। बाकी रही बात याद की, तो देखो पति मिलता है तो सारी आयु पति को याद तो करते हैं ना, कब याद करते हैं? हैं? मिलता है तभी तो याद करते हैं, मिले ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? कितना लव रखते हैं, क्योंकि बाप से भी लव तो होता है ना। जैसे जो स्त्री होती है ना, बच्चों से स्त्री को पति के साथ प्यार जास्ती होता है। बच्चे का इतना नहीं होता है जितना स्त्री का उनके साथ होता है। बाबा आकर कहते हैं, तो मुझे सागन तो कहते ही रहते हो ना, और ये सजनी, वो तो तुमको दुर्गति में ले जाते हैं, ये साजन तो तुमको सदगति, सो भी एक जन्म की नहीं कि जन्म के लिए ले जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे साजन को याद करना चाहिए, परंतु माया है वो याद करने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम याद करेंगे इतना खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा, और दिन प्रतिदिन पारा चढ़ता जाएगा, क्योंकि एक तो याद करना है, दूसरा भी बाबा ने समझाया है कि चक्कर घुमाना है। अच्छा, ये तो समझाए देंगे बरोबर, परंतु उनको समझाना है दो बाप के ऊपर भी, समझाया ना, कौन कौन से दो बाप हैं? लौकिक बाप इस दुनिया का और पारलौकिक बाप, इस दुनिया के पार रहने वाला। पारलौकिक बाप भी बेहद का और लौकिक बाप भी बेहद का। बाबा ने कहा है ना, तुम जाते हो नीचे से देखो, दो बाप होते हैं ना, एक बाप होते दूसरे को याद किया जाता है, दुख में याद करते हैं, और इस बाप को सुख में सुमिरन नहीं किया जाता है। सुख में याद नहीं किया जाता है, तो ये याद करो। अच्छी तरह से याद करो कि दो बाप हैं, सत्ताईस चार छियासठ की वाणी का चौथा पेज। हमको जब दुख होता है तो उस बाप को याद करते हैं। किस बाप को? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अच्छा, फिर जब सत्युग में कहा जाता है तो उस बाप को कोई याद नहीं करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो आकर के हमको इतना सुख देते हैं जो फिर 21 जन्म आधा कल्प हमको याद ही नहीं किया जाता है, इतना सुख देते हैं। ये समझ जाना चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए ना। जो गायन गाया जाता है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ऐसे गाया जाता है ना, तो कहाँ का गायन है? है संगम युग का गायन है। संगम युग में ही ऐसी दो स्थितियां हो जाती हैं। अभी दुख है या सुख है? है दुख की दुनिया है तो याद किया जाता है। जब स्वर्णिम संगम युग हो जाएगा तो लक्ष्मी नारायण याद करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो जरूर कोई दुख हरता ऐसा है जो सुख में याद नहीं आता है, वो सुख ऐसा करता है कि जो हमको याद भी करने की दरकार नहीं रहती। अभी अर्थ कितना सहज है देखो, ये दो बाप हुआ ना, तो बाप के लिए समझाया जाता है अच्छी तरह से कि देखो भक्ति मार्ग में दो बाप होते हैं, फिर उनको भी याद करते हैं जब दुख होता है घड़ी घड़ी, हे भगवान हे भगवान मांगते रहते हैं, भगवान हमको बेबी दो, भगवान हमको धन दो, भगवान हमको फलाना करो, ऐसा करो वैसा करो, हमारा दुख दूर करो, ऐसे भगवान को कहा जाता है ना, भगवान को भी कहा जाता है और फिर देवी देवताओं को भी कहा जाता है। ये देवी देवताएं भी कोई दूसरे नहीं है, भगवान भी है और तुम भी हो उनके साथ, तुम भी तो अभी सबका दुख हरते हो ना, सबको ज्ञान देते रहते हो ना, पीछे फिर देवियों के पास भी जाते हैं। पीछे माने भक्ति मार्ग में पहले एक शिव बाबा की याद करते हैं, पीछे कलयुग में देवियों की भी याद करते हैं। तो संगम युग में भी ऐसी शूटिंग होती होगी ना कि नहीं होती होगी? बाबा के पास भी जाते हैं तो फिर देवियों के पास भी जाते हैं। इस संगम युग की बात है ना, अब ये देवियां कोई दूसरी तो नहीं है ना, तुम ही तो हो ना, तो जास्ती करके देवियों के पास जाते हैं और उन देवियों का नाम भिन्न भिन्न रख दिया है। देवों का नाम भी भिन्न भिन्न रख दिया है, हनुमान फलाना फलाना, कब उनके पास भी जाते हैं, तो वो भी तो मेल्स हो गए ना, भले वो नाम अलग कर दिया है और वो नाम भी ठीक है ना, बोलता है भाई महावीर वो भी ठीक है, बरोबर मेल का काम है ना, महावीरता दिखाना, तो मेल की भी तो पूजा करते हैं ना। अभी नाम उल्टा रख दिया है, नहीं तो हैं बच्चे क्यों नहीं, तो देखो उनकी पूजा भी करते हैं और उनके पास जाते भी हैं, कुछ न कुछ मांगते भी रहते हैं। ये कौन फिर जाकर के मांगते हैं, ये भी देखो कितनी गुप्त बात है, है? वो कौन है जो जाकर के देवी देवताओं से मांगते हैं? इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में ही तो होती है। आगे थोड़े ही मालूम पड़ता था कि हम पूज्य हैं, हम फिर पुजारी बन करके फिर अपने ही रूपों की पूजा करते हैं। जब हमारी आत्माएं शुद्ध थी, हम फिर जो अशुद्ध बनते हैं तो आत्मा ही तो जाती है, आत्मा ही देवता बनती है शरीर लेकर के, वो ही आत्मा फिर है आकर के पतित शरीर लेकर के, वही फिर जो पावन शरीर पास्ट में होकर गए हैं उनको फिर जाकर के पूजते हैं। इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। देखो उनका भी कोई कहने मात्र तो नहीं होता है कि हम खुद ही पूज्य के तना समय रहे, फिर हम ही पुजारी रह करके हम खुद ही अपने पूज्य स्वरूप को पूजने लगे। देखो ये कितना बुद्धि में बैठता है बच्चों को कि क्या वंडर है इसका, समझा ना? अभी हम जान गए ना बरोबर, सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक हम पूज रहेंगे। पीछे हम वाम मार्ग में गए और पुजारी बन गए, त्रेता में भी हम ही जाते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर हम ही आकर के पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम अपने लिए समझो कि बरोबर हमने 21 जन्म पूज्य पने का जन्म लिया, फिर उनकी भी गिनती कर देते हैं। कोई 21 जन्म एक रस तो नहीं रहते हैं ना, अवस्थाएं तो नीचे उतरती है ना। 21 जन्म हम बरोबर पूज्य थे और जन्म बाई जन्म नीचे उतरते उतरते अब ये हालत हो गई। अच्छा जब पुजारी बनते हैं तो पीछे गिरते भी रहते हैं और अपने ही देवताओं को पूजते पूजते फिर देवताओं को तो क्या, फिर मिट्टी को भूतों को भी पूजने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति, फिर मिट्टी को भित्तर को ठिक्कर को फलाने को टीकरे को सांप को पूजते हैं। तो अभी बच्चों की बुद्धि में ये अच्छी तरह से याद आ गया ना, इसमें समझाने की तो कोई तकलीफ ही नहीं है अब कि मनुष्य ही 84 जन्म भोगते हैं तो जरूर नीचे आवेंगे ना। देखो 84 जन्म नीचे आकर के जाकर के पतित बनते हैं, फिर उनको ऊपर चढ़ना जरूर है। पहले जन्म में जाना है तो 84 जन्म की कहानी वो तो तुमने सुनी। बाबा ने कहा ना तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, 27 से 66 की वाणी का 5वां पी। अभी उनसे समझा कि 84 जन्म से 21 जन्म तुम पूज्य बनते हो, पीछे तुम बाकी 63 जन्म आकर के पुजारी बनते हो। ऐसे ऐसे बनते हो ना, तो ये याद रखना चाहिए ना। फिर जब हम पुजारी बनते हैं तो फिर मांगते रहते हैं, शूटिंग कहाँ होती है? है संगम युग में? कैसे तुम्हारी शूटिंग कैसे होती है? है तुम कहेंगे बीके वालों के लिए, बाबा कहते तुम भी तो पूज्य से पुजारी बनते हो ना, हमारी मांग। तो जब बाप आते हैं इतनी मांग पूरी करते हैं जो 21 जन्म हमको फिर कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि मांगने के वक्त में ईश्वर को याद किया जाता है। हे भगवान, हे भगवान हमको ये दो। देखो कभी भी उनसे पूछो ये किसने दिया, भगवान ने दिया, भगवान ने दिया है। दूसरा ले गया तो ले गया, फिर अफसोस की तो बात नहीं होनी चाहिए, है? वीके के जिज्ञासुओं को बीके जब जाते हुए देखते हैं कि गए कोई ले गया, तो उनको अफसोस होता है या नहीं होता है? होता है। जब उनके पास आए थे तो क्या कहा? भगवान ने दिया, भगवान ने दिया और भगवान ने ले लिया, तो अफसोस क्यों होना चाहिए? अरे ले गया तो ले गया, फिर इसमें अफसोस की क्या बात है? दिया किसने जिज्ञासु? हैं? जो बच्चे बीके में बढ़ते रहे अच्छे अच्छे बच्चे, वो किसने दिए? भगवान ने दिए। फिर कौन ले गया? वो बच्चे एडवांस में गए तो भगवान ने ही ले गया ना, तो अफसोस की तो बात ही नहीं। नुकसान भी होता है ना, फलानी चीज ऐसे गई, अच्छा ये कल पहले भी हुआ होगा, तो अफसोस क्यों होना चाहिए? वो खुद अपनी ही धुन में रहना चाहिए, याद में, क्योंकि मुख्य बात है याद करने की। याद करने से तो हमारा विकर्म विनाश हो जाएगा, तो हम जो भ्रष्ट आकर के बने हैं सो श्रेष्ठ बने याद से, क्योंकि श्रेष्ठ से भ्रष्ट, भ्रष्ट से श्रेष्ठ, ये चक्कर सारा है। 21 जन्म श्रेष्ठ नंबर बार, फिर 63 जन्म भ्रष्ट नंबर बार, पहले अच्छे भ्रष्ट, पीछे महाभ्रष्ट, ऐसे जाकर बनते हैं ना। तो समझने की बात तो बहुत सहज है ना, कोई डिफिकल्टी तो बच्चों के लिए है ही नहीं बिल्कुल, समझाना भी बहुत सहज है, धारणा भी करनी चाहिए। बच्चे याद करते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? हैं? आत्माओं को पढ़ाते हैं, देह अभिमानियों को तो पढ़ाते नहीं, हम आत्माओं को हर एक को ये बात धारण करनी है और फिर हमको ये बात दूसरों को सुनानी भी है। अपने जो भी पहले पहले इसने ही है उनके ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करेंगे आप समान बनाएंगे, तो दोनों की गिट पिट जरूर पहले होगी। क्या कहा है, किसकी बात बताई है? अरे जब बीके में आए थे तो पहले पहले इसने ही कौन हुए, बीके वाले हुए ना, तो जो हमारे पुराने बीके वाले इसने ही हैं, कोशिश करनी चाहिए ना उनको निकालने की, क्योंकि जो कोशिश करेंगे आप समान बनाएंगे तो क्या होगा, पहले दोनों की खिचपिट होगी, हो रही है कि नहीं? हाँ, तो देखो लौकिक दुनिया में भी पति आते हैं ज्ञान में, पत्नी नहीं आती है, या पत्नी आती है पति नहीं आते हैं। पहले तो पति पत्नी आपस में इसने ही थे या नहीं थे, हैं? फिर ज्ञान में आ जाता है कोई, तो फिर उनको निकालने में खिचपिट होगी कि नहीं होगी, होती है। तो यहाँ भी यहाँ है, फिर ब्राह्मणों की दुनिया की बात, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस वालों के जो पहले इसने ही थे कि नहीं, हम जब बेसिक ज्ञान में आए तो हमारे इसने ही वो बने या लौकिक दुनिया के संबंधी ज्यादा इसने ही हमने समझे, बीके वालों को समझा, तो उनको निकालना चाहिए ना, और निकालेंगे तो क्या होगा, हैं? झगड़ा, कुछ झगड़ा होगा या नहीं होगा, झगड़ा तो होगा, तो घर घर में झगड़ा चल जाता है, तो पहले तो उस झगड़े को मिटाना पड़े। क्या कहा, उसे झगड़े को मिटाना है या बढ़ाना है, मिटाना पड़े, परंतु नहीं, ड्रामा में ये झगड़ा है ही है, नूंद है, तो मिट भी नहीं सकते झगड़े, क्योंकि झगड़ों की नूंद है, झगड़ों की नूंद है तभी तो झगड़े होते हैं ना। फिर हम कहते हैं कल पहले भी ऐसे झगड़ा हुआ होगा, पति नहीं ये ज्ञान लेते होंगे तो भी प्रेम से अगर अच्छी तरह से बच्ची बैठ करके उनको समझाए, जो समझू बच्ची है तो कोई कोई अच्छे भी हो जाते हैं। क्या कहा, कि वो झगड़ा करे तो हम भी झगड़ा करने लग पड़े, कहीं कहीं बहुत स्त्रियां अपने पति को ले आती हैं, चल करके पूछो देखो सुनो, बाहर की दुनिया की बातें हंगामे मत सुनो, क्योंकि आगे भी तो कहा है ना, ये ऐसा था ऐसा था। शास्त्रों में कहाँ की बातें लिखी हैं? कृष्ण के लिए कहा है ना, अभी तो कोई कृष्ण के लिए कह नहीं सकते हैं। ऐसे भी नहीं कोई कृष्ण के आगे आ न सके, क्योंकि जो संगम युगी कृष्ण है वो साधारण है या असाधारण है? असाधारण है, है? अरे बाप नहीं, बच्चा। बाप तो शिव है, शिव गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है। और बच्चा, बच्चा भी अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष हो गया? जन्माष्टमी हो गई, प्रैक्टिकल में शिव जयंती हो गई, हो गई नहीं हुई? महाशिवरात्रि तो अभी होनी है ना, तो साधारण रूप है ना। इसलिए एक कृष्ण की अगर ग्लानी होती ये भागता है तो है भी ये भगाने की बात, और तो कुछ बात नहीं है। ये कृष्ण के लिए ही कहा जाता था कि कृष्ण ने भगाया है। अभी भी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, तो भी भले भगाया भी तो और ही सब घर बार छोड़ करके कृष्ण के पास आ जावे। आ जावे ना, अगर कृष्ण होवे तो। परंतु वो तो नहीं है ना, कृष्ण सजे सजाए रूप में है अभी नहीं, वो तो साधारण रूप में है। गाली कृष्ण तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है और ये साधारण रूप कलाहीन है या 16 कला संपूर्ण? जरूर कोई दूसरी आत्मा आसामी होगी जिसको गाली मिलती थी या अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे। कौन हुई दूसरी आत्मा है? कृष्ण तो सतयुग में जन्म लेगा, ये दूसरी आत्मा कौन आसामी है? इसके कारण अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, नहीं तो कृष्ण के साथ बनने से अबलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते? अगर कृष्ण होता तो हम खुशी से उसके पास जाते। माताएं अभी भी कृष्ण के पास दर्शन करने जाती हैं। सो अगर उनको मिल जाए तो और क्या चाहिए? परंतु ये हो कैसे सकता है? कृष्ण के पास आकर के कोई घर में भी नहीं जावे, और कृष्ण तो आ भी नहीं सकता है ना। अभी इस दुनिया में आ सकता है तो देखो, अभी इतना प्रदर्शनी हुआ, भले ये लिख करके आए होंगे, हमारे पास अभी लिखत आई नहीं है, परंतु तो भी इतना डंका मार करके किसको नहीं समझाया है। अरे भाई, ये गीता का निषेध किया हुआ है, गीता खंडन की हुई है, इसलिए ये भारत की बुरी गति हुई है। इसलिए आकर के इस राज को समझो। जो अभी तक इतनी जोर से डंका नहीं बजाया है। 27 से 66 की वाणी का 6वां पेज, वो कृष्ण आएगा डंका बजाने आयो, खलक तमाशे आयो। तो देखो ये खलक आती है ना, तमाशे आते हैं। ये तमाशा यही है, तो वो तमाशे की बात समझते थोड़े ही हैं। शिवरात्रि में ही कृष्ण की रात्रि भी मना देते हैं, क्यों? क्योंकि बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जब ये प्रत्यक्षता होती है तो डंके बजाते हैं। ओम शांति।